मैं दूसरे किसी प्रमाण पर अपने तर्क को आधारित नहीं करता। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, इसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में लेते हैं। अनुमान प्रमाण, जैसा हमने कहा कि पूर्व में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसकी अनुभूति हुई है और अब हम उसका अनुमान करते हैं। जैसे हम कह लें, पहले हमने कहीं पर आग लगते देखा, जब आग लगी तो जोरों से धुआं उड़ने लगा और तब बाद में कहीं पर हम जोरों से धुआं उड़ते देखते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं न कहीं आग लगी। इसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं कि पहले हमने उसे प्रत्यक्ष देखा था, आग लगी थी तो धुआं उड़ रहा था, इसलिए जब बाद में हम कहीं धुआं उड़ते देखते हैं तो हम कह देते हैं कि देखो कहीं आग लगी होगी, क्योंकि आग नहीं दिखाई दे रही है, दूर से केवल धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। पर अनुमान के बल पर हम कहते हैं कि कहीं पर आग लगी है, इसे अनुमान प्रमाण कहा। और शास्त्र प्रमाण कि जहां पर ग्रंथ के भीतर ग्रंथ में उस विषय वस्तु का वर्णन हुआ हो, इसे हम शास्त्र प्रमाण कहकर के पुकारते हैं। हमारी आस्था है, कई बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी हैं पर जिसे संत पुरुषों ने देखा है तो हम कहते हैं कि आप तो प्रमाण है, उन्होंने इसका अनुभव किया है, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं। जैसे हम स्वाभाविकतया सूक्ष्म योनियों को नहीं देख पाते, यह हमारा जड़ शरीर है तो जड़ शरीर को तो हम देख लेते हैं, यह जो स्थूल शरीर है वह दिखाई देता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है उसको हमारी ये आंखें देख नहीं पाती। पर जो योगी होते हैं, योगियों के भीतर में वह क्षमता होती है कि वे सूक्ष्म शरीर को भी देख लेते हैं। वे जब कहते हैं कि मैंने सूक्ष्म शरीर को देखा, तब उनकी बात का हमें विश्वास करना पड़ता है। जैसे प्रसंग आता है, श्री राम कृष्ण देव एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी को लेकर के एक भक्त के यहां गए हुए थे और भक्त का नाम था गोपाल की मां। जब आप श्री राम कृष्ण देव का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें गोपाल की मां का उल्लेख है। ईश्वर को वे गोपाल के रूप में पूजती थी, वह विधवा थी और इसलिए भक्तों में उनका नाम प्रचलित हो गया गोपाल की मां। वैसे उनका नाम था अघोरमणि देवी, पर गोपाल की मां के नाम से वे जानी जाती थी। बाल गोपाल की वे उपासना करती थी और उसी दृष्टि से वे सारे जगत को देखती थी। तो उनके निमंत्रण पर एक बार श्री राम कृष्ण देव स्वामी ब्रह्मानंद जी को लेकर के वहां गए। स्वामी ब्रह्मानंद जी तब तो छोटे थे, राखाल के नाम से परिचित थे, श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते थे। तो गए जहां पर गोपाल की मां रहा करती थी, रात में वहीं पर रुकने की बात थी। पर श्री रामकृष्ण ने देखा जो ही वे वहां पर गए, उनको कुछ विचित्र सी अनुभूतियां हुई और वे देखते क्या हैं कि प्रेत योनि में कई प्रेत आकर के उनसे कह रहे हैं कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम यहां से जल्दी जाओ, तुम्हारे कारण हम बहुत मानो कि ताप में हैं, हम तुम्हारे इस तेज को सह नहीं पा रहे हैं, तुम शीघ्र यहां से जाओ। तब श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम लोग किसी प्रकार का उत्पात न करो, इस विधवा ने भोजन के लिए मुझे बुलाया है तो भोजन करके मैं चला जाता हूं। भोजन उन्होंने किया और उसके बाद वे राखाल से कहते हैं, चल राखाल हम लोग लौट करके चले। राखाल ने कहा, क्यों, सोने के लिए तो यहीं आए थे, आपने तो कहा था कि रात आप यहीं पर रहेंगे। कहा कि नहीं, पहले तो सोच करके आया था कि हम लोग यहीं रहेंगे, पर अभी ऐसा लगता है कि हम लोग दक्षिणेश्वर लौट चलें। और वे दक्षिणेश्वर लौट गए। दक्षिणेश्वर में आकर के श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू जानता है क्यों लौट आए? राखाल ने पूछा क्यों? कि वहां पर बहुत से प्रेत आकर के इकट्ठा हो गए थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम जल्दी से यहां से जाओ, हम तुम्हारा तेज सह नहीं सकते हैं। तरह तरह की आकृति वाले थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यदि किसी प्रकार का उत्पात वे करेंगे तो तुझे बहुत डर लगेगा। सुनते ही राखाल के रोंगटे खड़े हो गए और कहा कि बाबा अच्छा किया वहां पर मुझे नहीं बताया, नहीं तो सचमुच मुझे बहुत भय लगता। तब राखाल की उम्र बहुत छोटी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? श्री राम कृष्ण सूक्ष्म देहधारियों को देख रहे हैं, प्रेत योनि को देख रहे हैं, पर हमारी आंखें सक्षम नहीं है देखने में। पर वे जब कह रहे हैं उनके वचनों का हमें विश्वास है, इसको आप्त प्रमाण कहते हैं कि संतों ने आप्त पुरुषों ने जो देखा है उसकी वे घोषणा करते हैं, तो इसे आप्त प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमने इन तीनों प्रमाणों की दृष्टि से पुनर्जन्म को देखा था कि यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से हमने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से पुनर्जन्म को तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ऐसा किसी ने देखा हो कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ और वही व्यक्ति कहीं पर जन्म धारण करता हो, ऐसा तो किसी ने नहीं देखा। पर अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण की दृष्टि से यह पुनर्जन्म संगत है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए क्या करें? हमने तरह तरह से तर्क उठाए, विज्ञान की दृष्टि से कई प्रकार के तर्क उठाए, चिंतना की, विचार किया और यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि पुनर्जन्म को स्वीकार किए बिना इस जीवन की प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता, यह हमने तब कहा था। तो इसी दृष्टि से हमने तीन प्रवचनों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को रखा था। आखिरी दिन जिस दिन हम पुनर्जन्म की आखिरी चर्चा कर रहे थे अपने तीसरे प्रवचन में, तब हमने कहा था कि कर्म उसके साथ साथ चला करता है, कर्म के सिद्धांत पर यह पुनर्जन्म खड़ा है। कैसे हमने कहा? हमने यह कहा था कि बाहर का यह शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर में मन विचार करता है, उसका हम अनुमान कर रहे हैं कि मेरा मन विचार कर रहा है, तरह तरह की उथल पुथल मेरे मन में हो रही है, यह तो हम सभी देखते हैं। पर मन को हमने कभी देखा है? नहीं देखा है। हम मानो मन के साथ एक रूप हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरा मन उथल पुथल कर रहा है, पर कभी हमने अपने मन को नहीं देखा। पर योगी क्या करता है? योगी में इतनी क्षमता आ जाती है कि मानो वह मन से बाहर आकर के मन को देखता है। यह कहने की भाषा है कि जैसे मानो वह अपने से बाहर आ जाता है, मन से बाहर आकर के मन को देखता है। अब यह भाषा कुछ अटपटी सी लगेगी कि मैं मन के बाहर आकर के मन को देखता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं जैसे अपने शरीर को अभी तो नहीं देख पाता, हाथ को देखता हूं, पर मैं अपने मुंह को नहीं देख पाता, पर यदि मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं अपने मुंह को भी देखता हूं। एक माध्यम से, दर्पण के माध्यम से मैं अपने चेहरे को देखता हूं, जिस चेहरे को मैं वैसे नहीं देख पाता। सीधे मैं आंखों से देखना चाहूं अपने चेहरे को तो नहीं देख पाता, एक माध्यम लेना पड़ता है। तो यह जो मनोयंत्र है, इस मनोयंत्र को हम अभी देख तो नहीं पाते, माने हम उससे अलग हो करके, अलग कट करके, उससे अलग खड़े हो करके हम मन को समझने में समर्थ नहीं होते। पर एक ऐसी स्थिति साधना की होती है जहां पर हम मन से अलग हो जाते हैं और मन को देखते हैं, यह बड़ी विलक्षण स्थिति है। या यूं कह लें कि जैसे योग के द्वारा, साधना के द्वारा यह स्थिति भी आती है कि मैं मानो इस शरीर से अलग हो जाता हूं और अलग होकर के अपने शरीर को देखता हूं। ऐसे भी अनुभव बहुत साधारण व्यक्तियों को हुए हैं। एक बहुत छोटी सी किताब है लाइफ बिफोर लाइफ नाम की, बड़ी प्रचलित भी है, पेपर बैक एडिशन है, और उसमें कई इस प्रकार के संदर्भ हैं, कई प्रसंग हैं, कई घटनाएं हैं जहां पर व्यक्तियों ने अपने जन्म को देखा या अपने इस शरीर को देखा, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर से हट गया, मानो उनकी मृत्यु हो रही है, और उसमें वे ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं इस शरीर से निकल गया और निकल करके अपने शरीर को देख रहा हूं कि वह मृत पड़ा है। यह बड़ा विलक्षण है। और वह जो पुस्तक में घटनाएं हैं तो वे घटनाएं हिंदुओं से संबंधित नहीं है, कि जिनमें पुनर्जन्म पर विश्वास है वे अंग्रेजों से संबंधित हैं, अमेरिकनों से संबंधित हैं, यूरोप के निवासियों से संबंधित हैं, ऐसे लोगों से संबंधित वे घटनाएं हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। और वहां पर ये जो लेखक हैं, जहां भी उनको ऐसा पता लगा कि कुछ समय के लिए यह व्यक्ति क्लिनिकली मर गया था, क्लिनिकली का मतलब कि चिकित्सक की दृष्टि से उसकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने घोषणा कर दी थी कि इसकी मृत्यु हो गई है, और बाद में सुना गया कि आधे घंटे के बाद उसमें जीवन आ गया, जी उठा। जहां जहां भी उसको इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिली, यह व्यक्ति गया, उनसे पूछता है और उनके अनुभवों के संबंध में पूछता है कि यह जो आधा घंटा चिकित्सक की दृष्टि से आप मृत रहे तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ। तो ऐसे ये अनुभव उस पुस्तक के भीतर में रिकॉर्डेड है, लाइफ बिफोर लाइफ में। और वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से कई व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से इसका वर्णन करते हैं कि अपने आप को वह देख रहा है, उसका शरीर पड़ा हुआ है, फिर उसको एक प्रकार की प्रेरणा होती है कि वह शरीर के भीतर में घुस जाए, इच्छा नहीं होती, फिर भी वह बलपूर्वक उसके भीतर में प्रविष्ट कराया जाता है, उसे प्रेरित किया जाता है कि शरीर के भीतर में घुसे, और बहुत अनिच्छा के साथ वह शरीर के भीतर में घुसता है और शरीर में चेतना का संचार होता है। ऐसी घटनाएं, तो हम यह कह रहे थे कि योगी इच्छा के अनुसार शरीर से बाहर निकल करके शरीर को देख लेता है, मन से अलग हट करके मन को देख लेता है। जैसे मैंने एक पुस्तक का हवाला दिया था, एक विज्ञान पर बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी गई है लिंकन बार्नेट के द्वारा, पुस्तक का नाम है द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन। अब आप समझ सकते हैं कि लिंकन बार्नेट एक वैज्ञानिक हैं और विज्ञान की दृष्टि से उस पुस्तक में यह चर्चा करते हैं कि वस्तुतः जगत की समस्या क्या है, यह जो पहेली हमें दिखाई देती है संसार की, यह पहेली क्या है। आइंस्टीन ने इस जगत को किस रूप में देखा, द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन, उसमें एक बात वे लिखते हैं, यह कहते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक विचित्र बात आ गई है, एक पहेली को, एक समस्या को हल करने जाते हैं तो उस प्रक्रिया में कई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और इसलिए आज फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में समस्याओं का एक बहुत बड़ा अंबार खड़ा हो गया है और हम इन समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। लिंकन बार्नेट कहते हैं केवल एक ही ऐसा हल हो सकता है या एक ही ऐसा उपाय हो सकता है जिससे इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि वह उपाय कौन सा है, आपकी दृष्टि में वह हल कौन सा है, तो वे कहते हैं कि यह जो मनुष्य रूपी समस्या है, जब तक इस समस्या का सुलझाव नहीं होता तब तक इन दूसरी समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। उनकी दृष्टि में यह मनुष्य सबसे बड़ी समस्या है, मैन इज हिज ओन ग्रेटेस्ट मिस्टरी, यह मनुष्य अपनी सबसे बड़ी समस्या है। और वहां पर वे लिखते हैं कि मनुष्य अपनी इस समस्या को कभी भी सुलझाने की चेष्टा नहीं करता, उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं भी एक समस्या हूं। यह जो मनुष्य का मन है, हम मनुष्य के मन से या अपने मन से संसार को जानने की इच्छा करते हैं और जानने की चेष्टा भी करते हैं, पर कभी हमने अपने मन को जानने की चेष्टा की, या प्रश्न में करते हैं कि मैं अपने मन के द्वारा सारे संसार को जानना चाहता हूं, पर कभी मैंने ऐसा प्रयास किया कि इस मन को भी तो समझूं कि मेरा यह मन क्या है, यह जो औजार जिसके सहारे मैं दुनिया को जानना चाहता हूं, यह औजार अपने आप में क्या है, इस मन का स्वरूप क्या है। कभी मुझे अपने मन को जानने की न तो इच्छा होती है न प्रेरणा होती है। बाहर की अन्य वस्तुओं की जानने की इच्छा होती है, प्रेरणा भी होती है, पर जिस मन रूपी औजार के सहारे मैं दुनिया को जानने का प्रयत्न करता हूं, उस मन रूपी औजार को जानने का कभी मैंने प्रयास नहीं किया। इसको वे बड़ा आश्चर्य मानते हैं और वे यह कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने इस मन रूपी औजार को समझने की चेष्टा नहीं करता, मन रूपी पहेली को समझने की चेष्टा नहीं करता, तब तक बाहर की समस्याओं का सुलझाव कभी नहीं होगा। और फिर आगे चलकर के वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर में एक अपूर्व सामर्थ्य है, मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी। वह क्या है अपूर्व सामर्थ्य? मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी टू ट्रांसेंड हिमसेल्फ एंड परसीव हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन, कि मनुष्य में यह अपूर्व सामर्थ्य है कि अपने को वह लांग जा सकता है और लांग करके अपने को देख सकता है। यह बड़ी विचित्र बात लिंकन बार्नेट लिखते हैं। विचित्र बात इसलिए है कि वह विज्ञान के संदर्भ में कही गई है, दर्शन के संदर्भ में विचित्रता नहीं है, क्योंकि दर्शन यह स्वीकार करता है कि मनुष्य अपने से बाहर चला जा सकता है और अपने से बाहर निकल करके अपने को देख सकता है। इसी को हमने ज्ञान की चरम अवस्था कहा है। यही वह चरम अवस्था है जब मनुष्य अपने को लांघ जाता है। पर विज्ञान की दृष्टि से यह विचित्र बात है, पर एक वैज्ञानिक इस संभावना का उल्लेख कर रहा है, यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है कि वह कहता है कि मनुष्य में अपूर्व सामर्थ्य है अपने को लांघ जाने की और अपने को लांघ करके अपने को देखने की। इसी को हमने जीवन के लक्ष्य के रूप में निरूपित किया कि मैं अपने शरीर को लांघ नहीं पाता हूं, मन की सीमा को लांघना तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने शरीर से हटकर के देख नहीं पाता हूं। जो कुछ मैं देखता हूं, विचार करता हूं, उस सब का केंद्र मेरा यह शरीर है। शरीर से संबंधित ही सब कुछ देखूंगा, शरीर से संबंधित ही सब कुछ विचार करूंगा। जब थोड़ी साधना अच्छी चलती है, हम कुछ साधना के क्षेत्र में उन्नत होते हैं, तो हम इस शरीर की सीमा को पार करके ऊपर उठते हैं और तब हम मन की सीमा में आते हैं। और मन की भी सीमा को पार करने के बाद जिसे हम कहेंगे हम आत्मा के धरातल पर आते हैं या आत्मा के क्षेत्र में आते हैं। तो हमने यह कहा था पुनर्जन्म की दर एक ऐसा तत्व है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह शाश्वत है। इसीलिए यह जो शरीर का परिवर्तन है या मन का परिवर्तन है हमें दिखाई देता है। और यह बहुत सही बात है कि जब तक हम ऐसी जगह पर खड़े न रहें जहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो हम बाकी परिवर्तनों को देख नहीं पाते। जैसे उदाहरण हमने दिया, मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं, पानी बह रहा है, तो पानी को बहते हुए कैसे देखता हूं? इसलिए देखता हूं कि मैं किनारे पर खड़ा हूं और किनारे पर खड़े होने के कारण मैं पानी का बहना देख पाता हूं। पर यदि मैं पानी के साथ बहता चला तो पानी के बहाव का मुझे अनुभव नहीं होगा। पर जब मैं किनारे पर खड़े होकर के देखता हूं तो मुझे लग रहा है हां जल प्रवाहित हो रहा है, पानी बह रहा है। तो ठीक इसी प्रकार मुझे शरीर का परिवर्तन दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आज से इतने साल पहले मैं कितना छोटा था, 52 साल पहले मैं बहुत छोटा था। बहुत संभव है अगर मेरी ऊंचाई नापी गई तो 1 फुट का मैं रहा होऊंगा, वजन 7 पाउंड का रहा होगा। और 52 वर्ष में मैं 6 फुट का हो जाता हूं, मेरा वजन भी 200 पाउंड हो जाता है। तो यह जो परिवर्तन सतत हो रहा है शरीर में, यह मुझे दिखाई देता है। और यह जो मन का परिवर्तन है वह भी दिखाई देता है। कभी मैं अपने को अच्छा महसूस करता हूं, मेरा मन आनंद में होता है, कभी मेरा मन दुख में डूबा होता है। तो मन का परिवर्तन भी मुझे दिखाई देता है। और फिर मुझे मन की बातें याद भी रहती हैं, कोई घटना घट गई। आज से 50 साल पहले जब मैं केवल 2 वर्ष का था कोई घटना घटी, आज भी वह घटना मुझे याद है। क्यों याद है? यदि जीवन को हम केवल बहता हुआ जल ही स्वीकार करें, जैसे विज्ञानवादी हैं, बौद्ध धर्म में एक मत है, संप्रदाय है जिसको कहते हैं, अभी हमारे भीतर में परिवर्तन हो रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जो 52 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। मेरे भीतर में यह भाव है, यही बता रहा है कि मेरे शरीर में कितना भी परिवर्तन हुआ हो, मेरे मन में कितना भी परिवर्तन हुआ हो, पर मैं बिल्कुल वही जानता हूं कि 52 वर्ष पहले जिसका जन्म हुआ था वही व्यक्ति मैं हूं। तो इन समस्त परिवर्तनों के बीच एक प्रकार का एकत्व का आभास देने वाला यह कैसे हो रहा है? तो इसलिए हमने कहा था कि इन परिवर्तनों को मानो उसके मानो कगार पर इन परिवर्तनों को देखने वाला ऐसा कोई तत्व है, और उसी तत्व को हमने आत्म तत्व कहकर के पुकारा था कि आत्म तत्व कैसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जहां पर खड़े होकर के हम शरीर का परिवर्तन देखते हैं, मन का परिवर्तन देखते हैं, और आत्म तत्व में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वह शरीर और मन के समस्त परिवर्तनों को संबद्ध करता है, वह एकत्र करता है और हमारे समक्ष एकत्व की अनुभूति कराता है। और ये जो घटनाएं घट गई हैं उनको एक सूत्र में पिरोता है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था सिनेमा का, हम सिनेमा देखने जाते हैं, पर्दे पर एक कहानी कही जा रही है, जब हम पर्दे पर देखते हैं तो वह कहानी हमें दिखाई देती है, पर अगर उन फिल्मों को देखें जो बहुत तेज गति से भाग रही है पीछे की ओर, यदि हम फिल्मों की रील को मंगा लें और देखें तो छोटी छोटी फिल्में होती हैं, और हमने कहा कि छोटी छोटी फिल्मों को देखें तो कोई कहानी नहीं मालूम पड़ती। एक फिल्म में किसी का हाथ इतना है तो दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है, चौथे में ऐसा है, और इस प्रकार ऐसा करके इतना लाने के लिए कितनी फिल्म आ गई होगी। अब वह फिल्म तेजी से भाग रही है और उसको हम पर्दे पर प्रतिबिंबित करते हैं तो उसमें कहानी दिखाई देती है। अब हमने कहा तेजी के साथ पीछे में फिल्म भाग रही है, वह प्रतिबिंबित होती है, कहां प्रतिबिंबित होती? पर्दे पर। पर्दा कैसा है? स्थिर है। अगर हम पर्दे को भी गति दे दें, पर्दा हिलने डुलने लगे तो आप देखेंगे चित्र ठीक से नहीं बैठता। जैसे लोग बाहर में कभी कभी सिनेमा दिखा देते हैं, ये जैसे प्रकाशन विभाग वाले हैं तो वे ला करके दिखाते हैं पब्लिसिटी वाले, और वहां पर पर्दा टांग देते हैं और पर्दे पर फिल्म आ रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, जोरों से आंधी आती है या पवन चलता है तो पर्दा हिलने लगता है, और पर्दा जब हिलने लगता है तो ठीक अक्स नहीं बैठता, उसे चित्र ठीक नहीं मालूम पड़ता, और इससे हमको सुसंबद्धता मालूम नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या कि यह जो फिल्म अलग अलग टुकड़ों में है, तो यह जो अलग अलग टुकड़ों में जिसका कोई मतलब नहीं होता तो इसकी कहानी कहां दिखाई देती है? जब उसे हम प्रतिबिंबित करते हैं एक स्थिर पर्दे पर। ठीक इसी प्रकार यह जो आत्मा है वह स्थिर पर्दा है, और इस पर यह मन रूपी फिल्में, घटना चक्र रूपी फिल्में भाग रही हैं, सतत भाग रही हैं, पर उस आत्मा रूपी स्थिर पर्दे के कारण इन समस्त घटनाओं को जोड़ लिया जाता है, एक कहानी उसके भीतर से प्रकट होती है। यह हमने कहा था वही आत्म तत्व है, और यह जो आत्म तत्व है वह सर्वव्यापी है, विभू है, शाश्वत है, इसकी भी हमने चर्चा की थी, वह सभी ओर है। इसका मतलब क्या है कि वह जो स्थिर तत्व है वह क्या केवल मेरे शरीर में है और शरीर के बाहर नहीं है? वह शरीर में है, शरीर के बाहर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह उसी के कारण मानो हमको हमारे भीतर में चैतन्य का आभास होता है। वही तो हमने कहा था कि वह जो चैतन्य दिखाई देता है वह आत्मा का चैतन्य है। जैसे हमने आपके समक्ष एक प्रश्न रखा कि जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होती है तो क्या आत्मा निकल जाता है? आत्मा कैसे निकलेगा? आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो यह जो मुर्दा पड़ा हुआ है तो मुर्दा के भीतर में आत्मा है या नहीं, यह प्रश्न हमने उठाया था और इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था। यदि आत्म तत्व सर्वव्यापी है तो वह जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसके भीतर में आत्म तत्व है या नहीं? और यदि हम कहें कि आत्म तत्व है तो आपको लगेगा फिर गया क्या, निकल करके क्या गया? इसीलिए हमने कहा था कि यह जो हमारा विकासवाद है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, फिर आत्मा के दो गुण मानता है, एक गुण चैतन्य और दूसरा गुण प्राणवत्ता। ये दो गुण इस आत्म तत्व में हैं, पर ये आत्मा के गुण कहां पर प्रकट होते हैं? जहां पर मनोयंत्र होता है। जहां पर भी मनोयंत्र है वहां पर व्यक्ता है, और जहां पर मनोयंत्र नहीं है उसको हम जड़ कह दिया करते हैं। यह जो विभाजन किया वेदांत शास्त्र ने, एक कोटि को कहा जड़, जैसे पत्थर को हम जड़ कहते हैं, और दूसरे को चैतन्य कहते हैं, वनस्पति को चैतन्य कहते हैं, जैसे पौधा है उसके भीतर में चेतना है तो उसको हमने चैतन्य कहा, उसके भीतर में प्राणवत्ता दिखाई देती है। और जड़ किसको कहा? जिसके भीतर में प्राणवत्ता नहीं दिखाई देती, चैतन्य नहीं दिखाई देता, उसको हम जड़ कहकर के पुकारते हैं। तो सामान्य दृष्टि से कोई हमसे पूछे कि जड़ और चेतन क्या है, तो उसका उत्तर हम यह देंगे कि देखो, जिसके भीतर में प्राण का स्पंदन नहीं, जिसके भीतर में चैतन्य नहीं, उसको हम जड़ कहते हैं। और जिसके भीतर में प्राण का स्पंदन है, जिसके भीतर में चेतना दिखाई देती है, उसको हम चैतन्य कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक दृष्टि से उत्तर बिल्कुल सही है, पर टेक्निकल दृष्टि से, पारिभाषिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से यदि यह उत्तर देना चाहें तो हम यह कहेंगे कि जिसके भीतर में मनोयंत्र नहीं होता उसको जड़ कहते हैं, जिसके भीतर में मनोयंत्र होता है उसको हम चेतन कहते हैं। यह शास्त्रीय दृष्टि से उत्तर है कि जिसके भीतर में मनोयंत्र नहीं है, जैसे पत्थर है, पत्थर में चेतना क्यों नहीं दिखाई देती, पत्थर में यह प्राणवत्ता क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए कि उस पत्थर के भीतर में मनोयंत्र नहीं है। इस वनस्पति में हरी हरी दूब में प्राणवत्ता क्यों दिखाई देती है, चेतना क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके भीतर में मनोयंत्र है। अब यह बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है कि यहां पर यह माना गया कि दो प्रकार के सिद्धांत माने गए हमारे यहां, कि यह जिसे हम पत्थर कहते हैं उसके भीतर में मनोयंत्र नहीं है, और जिसको हम वनस्पति कहते हैं, और वनस्पति में प्राण में सबसे नीचे की श्रेणी में माना गया है स्तंभ, जिसको हम घास का तिनका कहेंगे। तो यह जो आब्रह्म स्तंभ पर्यंत, यह संस्कृत में एक फ्रेज है, आब्रह्म मन ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक, घास के तिनके तक। तो यह जो घास का तिनका है, तो घास के तिनके में जो चेतना है वह सबसे, जिसको कहेंगे निकृष्ट, चेतना का सबसे निकृष्ट रूप है यह घास का तिनका है, पर उसके भीतर मनोयंत्र है ऐसा। तो एक में मनोयंत्र का होना और दूसरे में मनोयंत्र का नहीं होना। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत कहता है कि देखो, तुम कह रहे हो कि पत्थर में मनोयंत्र नहीं है, पर हम कहते हैं कि उसमें भी मनोयंत्र है, पर उसमें मनोयंत्र मानो बिल्कुल अचेतन है। माने ये शब्दों का फेर है केवल, कि एक जो सिद्धांतवादी है, एक सिद्धांत वाले ऐसा कहते हैं कि पत्थर में भी हम मनोयंत्र को स्वीकार करते हैं, पर पत्थर के भीतर में जो मनोयंत्र है वह जड़ हो गया है। पत्थर में जो मनोयंत्र है वह मानो बिल्कुल, जिसे कहेंगे कि अविकसित अवस्था में है, परंतु यह जो मनोयंत्र है वनस्पति में वह जड़ विकसित अवस्था में है। यह शब्दों का केवल फर्क है। अगर हम बात को समझना चाहते हैं तो इसमें हम न जाएं, इतना ही मान लें कि पत्थर के भीतर में मनोयंत्र नहीं है, वनस्पति के भीतर में मनोयंत्र है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यह जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व सर्वत्र विद्यमान है, और जहां पर भी उसे मनोयंत्र मिलता है तो उस मनोयंत्र के कारण उस वस्तु के भीतर में चेतना दिखाई देती है और प्राणवत्ता दिखाई देती है। मनोयंत्र यह जो आत्मा का जो चैतन्य है उसे प्रकट कर देता है, आत्मा की जो प्राणवत्ता है उसको प्रकट कर देता है। अगर मनोयंत्र न रहे तो आत्मा का चैतन्य प्रच्छन्न हो जाएगा, आत्मा की प्राणवत्ता प्रच्छन्न हो जाएगी, ये दोनों गुण प्रकट नहीं होंगे। आत्मा में ये दोनों गुण हैं, उसमें चैतन्य भी है और उसमें जैसा कि कहा कि प्राणवत्ता भी है, ये दो गुण हैं। पर ये दो गुण प्रकट करने के लिए हमें मनोयंत्र चाहिए। यदि मनोयंत्र है तो प्रकट हो जाता है। अब जैसे इसको यूं समझा दें कि एक लड्डू है, बल्ब है। अब यह जो बिजली है वह तो सर्वत्र है, तो यह जो बिजली है सर्वत्र तो है, उसमें प्रकट हो रही बल्ब में प्रकाश के रूप में। अब उसमें प्रकाश के रूप में प्रकट तो हो रही है, पर अगर फिलामेंट टूट जाए, बल्ब ठीक वैसा ही है जैसा है, अब उसमें फिलामेंट थोड़ा सा टूट गया तो क्या होगा? उसमें बिजली आ तो रही है, बल्ब तक जा भी रही है, परंतु क्या है, तो फिलामेंट टूट जाने के कारण वह प्रकाश को व्यक्त करने का जो यंत्र था वह यंत्र टूट जाने के कारण बिजली के रहते हुए भी प्रकाश की उपलब्धि हमें नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है उसके भीतर चैतन्य है, उसके भीतर में प्राणवत्ता है, पर यह चैतन्य यह प्राणवत्ता तभी प्रकट होती है जब मनोयंत्र सामने होता है। जहां भी मनोयंत्र है वहां पर यह प्राणवत्ता प्रकट हो जाएगी, चैतन्य प्रकट हो जाएगा, और जहां पर यह मनोयंत्र नहीं है वहां पर आत्मा के ये दोनों गुण प्रच्छन्न हो जाएंगे।